एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनकी सोच ने हमें अपने वजूद पर, अपने चुनावों पर और हाँ अपनी चिंता पर भी, मतलब नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। मैं बात कर रही हूँ डानिश दार्शनिक सोरेन कीर्केगार्ड की।
हाँ बिल्कुल, कीर्केगार्ड एक ऐसा नाम जो अक्सर अस्तित्ववाद से जोड़ा जाता है।
बिल्कुल, उन्हें अस्तित्ववाद का जनक भी कहते हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी बातें सीधे हमारे होने के मतलब पर सवाल उठाती हैं। हम क्यों हैं, कैसे जिए, हमारे फैसलों का क्या अर्थ है, और वो एक बेचैनी जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है।
हाँ, वो चिंता, वो एंग्जाइटी।
और उनका अंदाज, वो सीधे सीधे नहीं लिखते थे, अलग अलग नामों से, मतलब छद्म नामों से।
हाँ, प्सूडोनिम्स, विक्टर एरेमेटा, योहानिस डे साइलेंशियो, एंटी क्लाइमैक्स, कई नाम थे।
इससे उनकी बातें और भी रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली बन जाती है ना। तो चलिए आज इस अनोखे विचारक के जीवन और उनके गहरे विचारों की परतों को खोलते हैं।
जरूर, और कीर्केगार्ड को समझने के लिए ना उनके जमाने को देखना बहुत जरूरी है। वो 1813 में कोपेनहेगन में पैदा हुए थे। डेनमार्क का स्वर्ण युग चल रहा था तब, मतलब डेनिश गोल्डन एज।
स्वर्ण युग सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या वाकई सब कुछ सुनहरा था उस वक्त डेनमार्क में?
हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। ऊपर से स्वर्ण युग, लेकिन अंदर काफी उथल पुथल थी। राजनीतिक तौर पर देखें तो डेनमार्क की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। नेपोलियन युद्धों के बाद देश लगभग दिवालिया हो चुका था। नॉर्वे हाथ से निकल गया था, एक तरह का राष्ट्रीय संकट था।
ओ अच्छा।
मगर उसी दौर में कला, साहित्य, दर्शन, इन सब में गजब की क्रिएटिविटी, गजब की रचनात्मकता दिखाई दी। जैसे कोई चीज टूटकर बिखर रही हो और उसी से कुछ नया खूबसूरत जन्म ले रहा हो।
ये तो सच में विरोधाभास है। तो उस समय माहौल कैसा था, मतलब विचारों की दुनिया में क्या चल रहा था?
उस समय ना जर्मन फिलॉसफी का, खासकर हेगल का बहुत दबदबा था। जॉर्ज विलहेम फ्रेडरिक हेगल।
हाँ, हेगल, उनका वो सिस्टम वाला दर्शन है ना?
बिल्कुल, हेगल का मानना था कि दुनिया एक तर्कसंगत व्यवस्था से चलती है, इतिहास का एक तयशुदा लक्ष्य है और व्यक्ति का महत्व समाज या राज्य का हिस्सा बनने में ही है। सब कुछ एक बड़े सिस्टम का पुर्जा है। किर्केगार्ड इसी सोच के, आप कह सकते हैं, सबसे बड़े आलोचक बने।
क्यों, उन्हें क्या दिक्कत थी हेगल से?
उन्हें लगता था कि ये सिस्टम वाली सोच व्यक्ति की निजी तकलीफ, उसकी छटपटाहट, उसके अपने सच को नजरअंदाज करती है।
मतलब आप सिस्टम में फिट हो गए बस?
आपकी अपनी जिंदगी, आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपकी आस्था, इनका क्या? हेगल के सिस्टम में व्यक्ति गुम हो जाता था।
और हेगल के अलावा
कोई और प्रभाव?
हाँ, स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म का भी असर था। वो भावनाओं पर, कल्पना पर, व्यक्ति के अंदरूनी अनुभव पर जोर देता था। किर्केगार्ड ने इससे कुछ लिया जरूर, पर इसकी भी आलोचना की। उन्हें लगा कि यह जरूरत से ज्यादा भावुकता में बह जाता है।
और समाज, समाज में क्या बदलाव आ रहे थे?
समाज भी बदल रहा था। मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआ कहते हैं, वो उभर रहा था। चर्च की सत्ता पर सवाल उठने लगे थे। लोग खुद को समुदाय से कटा हुआ, अकेला महसूस करने लगे थे। और हाँ, अखबारों का जमाना शुरू हो रहा था। किर्केगार्ड ने इस उभरते हुए प्रेस, और जिसे वो भीड़, द क्राउड कहते थे,
भीड़
मतलब आम जनता।
हाँ, पर उनके लिए भीड़ का मतलब था वो गुमनाम, बिना सोचे समझे राय बनाने वाली जनता। वो मानते थे कि ये भीड़ सतही होती है, गैर जिम्मेदार होती है और सच्चाई को दबा देती है। व्यक्ति की आवाज उसमें खो जाती है।
ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर में भी सच लगता है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये तो बाहरी माहौल की बात हुई, उनके अपने जीवन में क्या चल रहा था, उनका बचपन कैसा था?
उनका निजी जीवन भी, जैसा आपने कहा, कम उथल पुथल वाला नहीं था। उनके पिता माइकल पेरिसन किर्केगार्ड एक गरीब परिवार से थे, लेकिन मेहनत करके बहुत अमीर व्यापारी बन गए। पर उनके मन पर ना एक गहरा बोझ था, एक तरह का धार्मिक अपराध बोध, गिल्ट।
अपराध बोध किस बात का?
उन्हें लगता था कि उन्होंने जवानी में कुछ पाप किए थे, जैसे बचपन में ईश्वर को कोसा था, और सोरेन की माँ आने लुंड, जो पहले उनके घर में नौकरानी थी, उनसे शादी से पहले उनके संबंध थे। उन्हें डर था कि इन पापों की सजा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी।
बाप रे, ये तो बहुत भारी सोच है। इसका असर सोरेन पर कैसा पड़ा होगा?
बहुत गहरा। पिता की ये उदासी, जिसे सोरेन ने अपनी विरासत कहा, पूरे घर के माहौल पर छाई रहती थी, और फिर उनके सात भाई बहनों में से पांच की जवानी में ही मौत हो गई।
ओह, पांच की?
हाँ, इससे पिता का वो डर जैसे सच होता दिखा। इसने युवा सौरन के मन में पाप, दुख, ईश्वर का न्याय, इन सबको लेकर बहुत गहरे सवाल पैदा कर दिए। ये उदासी, ये मिलैंकली उनके लेखन में बार बार लौट कर आती है।
समझ सकते हो। और उनकी पढ़ाई?
उन्होंने कोपेनहेगन के एक अच्छे स्कूल, बोगोरी रीड स्कूल, और फिर कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र मतलब थियोलॉजी की पढ़ाई की। लेकिन उनकी दिलचस्पी असल में साहित्य और दर्शन में ज्यादा थी। यूनिवर्सिटी में ही वो हेगल के विचारों से और बाइबल की आलोचनात्मक व्याख्याओं से परिचित हुए।
तो शुरू से ही धर्म और दर्शन में रुचि थी?
रुचि तो थी, पर साथ ही गहरे शक और एक तरह का आध्यात्मिक संकट भी था। यूनिवर्सिटी के दिनों में उन्होंने कुछ समय थोड़ी बोहेमियन जिंदगी भी जी, थोड़ा कर्ज भी लिया और अपनी हाजिरजवाबी और व्यंग्य के लिए काफी मशहूर हो गए, एक डांडी की तरह।
अच्छा, तो उनके जीवन में वो कौन से खास मोड़ थे जिन्होंने उन्हें वो दार्शनिक बनाया जिन्हें हम आज जानते हैं?
ने पर ध्यान दे सकते थे बिना नौकरी की चिंता किए, और शायद एक तरह की मनोवैज्ञानिक मुक्ति भी मिली पिता के उस भारी प्रभाव से। फिर 1841 में उनकी मास्टर डिग्री की थीसिस आई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी, विडंबना की अवधारणा पर।
विडंबना, आयरनी, ये तो उनके लिखने के तरीके से जुड़ा है ना?
बिल्कुल, यहीं से उनके उस खास तरीके जिसे अप्रत्यक्ष संचार, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी नींव पड़ी।
और वो सगाई वाला किस्सा रेजिना ओल्सन का, सुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके जीवन में।
ओ हाँ, रेजिना ओल्सन, 1840 में उन्होंने रेजिना नाम की एक युवा लड़की से बड़े जुनून के साथ सगाई की। वो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1841 में अचानक और काफी रूखेपन से उन्होंने सगाई तोड़ दी।
तोड़ दी? क्यों?
तबीयत उनकी मेलानकली और उनका धार्मिक मिशन था। उन्हें लगा कि वो एक सामान्य सुखी वैवाहिक जीवन जी ही नहीं पाएंगे और रेजिना को भी दुख देंगे। ये उनके लिए एक तरह का जरूरी बलिदान था अपने लेखन और अपनी धार्मिक खोज के लिए।
लेकिन ये तो बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा।
बहुत मुश्किल, और इसने उन्हें जिंदगी भर परेशान किया। रेजिना की याद उनके शुरुआती कई कामों में झलकती है, जैसे आइदर और, फियर एंड ट्रेम्बलिंग, रेपिटिशन। ये घटना उनके लिए एक बहुत बड़ा क्रिएटिव ट्रिगर साबित हुई, मतलब उनके लेखन को इसने एक नई दिशा दी।
प्यार और कर्तव्य, या कहें कि प्यार और धार्मिक बुलावे के बीच का चुनाव। और फिर क्या हुआ?
फिर उन्होंने शादी नहीं की। पिता से मिली विरासत के सहारे उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ लिखने को दे दिया। वो कोपेनहेगन में रहते थे, लोग उन्हें जानते थे, रोज टहलते हुए देखते थे, पर अक्सर उन्हें समझ नहीं पाते थे। थोड़े सनकी किस्म के माने जाते थे।
और वो कॉर्सेयर कांड क्या था, सुना है उससे उन्हें काफी ठेस पहुंची थी?
हाँ, 1845-46 का द कॉर्सेयर अफेयर। कॉर्सेयर एक व्यंग्यात्मक पत्रिका थी, काफी लोकप्रिय थी। केरकेगार्ड ने पहले उसकी थोड़ी तारीफ की, फिर आलोचना, बस पत्रिका वाले उनके पीछे पड़ गए।
पीछे पड़ गए मतलब?
उन्होंने केरकेगार्ड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके भद्दे कार्टून छापे जिसमें उन्हें कुबड़ा दिखाया गया, पतली टांगों वाला दिखाया गया। सड़कों पर लोग उन पर फप्तियां कसने लगे। ये उनके लिए एक भयानक अनुभव था।
ओह, ये तो सार्वजनिक अपमान जैसा हुआ।
बिल्कुल, इस अनुभव ने प्रेस और उस भीड़ के प्रति उनकी नफरत को और पक्का कर दिया। उन्हें लगा कि ये भीड़ कैसे किसी व्यक्ति की गरिमा को, उसकी सोच को कुचल सकती है। इसके बाद वो और ज्यादा अकेलेपन में चले गए और व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई पर उनका फोकस और बढ़ गया।
तो बाहरी दुनिया से कटकर वो अपनी अंदरूनी दुनिया में और गहरे उतरते गए।
हाँ, कह सकते हैं। और अपने जीवन के आखिरी सालों में तो उन्होंने डेनमार्क के सरकारी चर्च पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने छोटे छोटे पैम्फलेट छापे जिनका नाम था द इंस्टेंट, वो क्षण।
चर्च पर हमला क्यों?
वो मानते थे कि चर्च, जिसे वो ईसाई जगत कहते थे, वो असली ईसाई धर्म का एक समझौतावादी, आरामदायक सामाजिक संस्करण बन गया है। उसने सच्ची मुश्किलों भरी आस्था को भुला दिया है। अक्टूबर 1855 में वो सड़क पर चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़े।
और फिर
उन्हें अस्पताल ले जाया गया और करीब एक महीने बाद नवंबर 1855 में उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए, मरते समय भी उन्होंने उस चर्च के पादरी से अंतिम संस्कार की रस्म लेने से इनकार कर दिया जिसकी उन्होंने इतनी कड़ी आलोचना की थी।
क्या जिंदगी थी, इतनी कश्मकश, इतना ड्रामा और इतनी गहरी सोच। ये सब उनके लेखन में कैसे झलकता है? उनकी सबसे जरूरी किताबें कौन सी हैं और उनमें खास क्या है?
उनका लेखन वाकई बहुत अनूठा और गहरा है। चलिए कुछ सबसे अहम किताबों और उनके मुख्य विचारों पर बात करते हैं। शायद सबसे पहले जिक्र करना चाहिए आइदर और या तो या का, जो 1843 में आई।
हाँ, आइदर और, इसे उन्होंने विक्टर एरेमिटा के छद्मनाम से लिखा था, है ना?
बिल्कुल। ये किताब ना जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग रास्ते पेश करती है। पहला है सौंदर्यवादी, एस्थेटिक रास्ता। ये वो रास्ता है जो मजा, सुंदरता, उत्तेजना और सबसे बढ़कर बोरियत से बचने के लिए जीता है। इसका प्रतीक है किरदार ए, लेकिन ये रास्ता आखिर में निराशा और खालीपन की ओर ले जाता है।
और दूसरा रास्ता?
दूसरा है नैतिक, एथिकल रास्ता। इसे जज विल्हेम नाम का एक किरदार पेश करता है। ये रास्ता जिम्मेदारी, कर्तव्य, शादी, सामाजिक नियमों को मानने पर जोर देता है। एक स्थिर, सम्मानित जीवन।
तो किताब बताती है कि कौन सा रास्ता सही है?
नहीं, यही तो कीर्केगार्ड की खासियत है। किताब आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, वो दोनों रास्ते आपके सामने रखती है और आपको मजबूर करती है कि आप चुने। आप बस किनारे खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते, आपको फैसला करना होगा कि आप कैसे जिएंगे। यहीं से वो विचार निकला जिसे बाद में सार्त्र जैसे अस्तित्ववादियों ने उठाया, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस। मतलब हम पहले दुनिया में आते हैं एक कोरे कागज की तरह, फिर अपने चुनावों से, अपने कर्मों से तय करते हैं कि हम क्या हैं, हमारा सार क्या है।
वाह, ये तो पाठक को सीधे चुनौती है। अच्छा, और उसी साल एक और किताब आई थी, फियर एंड ट्रेम्बलिंग, भय और कंपन, उसका क्या विषय था?
हाँ, वो योहानिस डे साइलेंशियो के नाम से आई थी। ये बाइबल की कहानी पर आधारित है, इब्राहिम और इसहाक की, जब ईश्वर इब्राहिम से उनके इकलौते बेटे इसहाक की बलि मांगते हैं।
हाँ, बहुत जानी मानी कहानी है।
कीर्केगार्ड इस कहानी के जरिए आस्था, फेथ के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची आस्था तर्क और नैतिकता के दायरे से परे होती है। ये एक आस्था की छलांग है, लीप ऑफ फेथ है। इब्राहिम का काम नैतिक दृष्टि से तो भयानक था, अपने बेटे को मारना, लेकिन आस्था की दृष्टि से वो ईश्वर की आज्ञा मान रहे थे।
मतलब आस्था नैतिकता से भी ऊपर,
कीर्केगार्ड के लिए। हाँ, वो इसे नैतिकता का उद्देशात्मक निलंबन, टेलीलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल कहते हैं। मतलब जब ईश्वर का बुलावा आता है तो शायद आपको समाज के नैतिक नियम भी एक तरफ रखने पड़े। ये व्यक्ति और ईश्वर के बीच का एक बहुत ही निजी, सीधा और कभी कभी भयानक रिश्ता है। तर्क यहाँ काम नहीं आता।
ये तो वाकई चौंकाने वाला विचार है। और चिंता, एंग्जायटी पर भी उन्होंने लिखा था।
हाँ बिल्कुल, 1844 में आए द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जायटी, चिंता की अवधारणा, इसे विजिलियस हॉफनियंसिस ने लिखा था। इसमें वो चिंता को स्वतंत्रता का चक्कर, डिजीनेस ऑफ फ्रीडम कहते हैं।
स्वतंत्रता का चक्कर, इसका क्या मतलब हुआ?
उनका मानना था कि चिंता कोई बीमारी नहीं है जिसे दूर किया जाए, ये इंसान होने का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये वो बेचैनी है, वो घबराहट है जो हमें तब महसूस होती है जब हमें अपनी असीम संभावनाओं का, अपनी चुनने की आज़ादी का एहसास होता है। हमारे सामने इतने रास्ते खुले हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच ही हमें चकरा देती है। यही चक्कर चिंता है।
तो चिंता हमारी आज़ादी का ही एक साइड इफ़ेक्ट है, कह सकते हैं। कमाल की बात है। उनकी और कौन सी किताब है जो बहुत अहम मानी जाती है?
एक और बहुत जरूरी किताब है, कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट टू फिलोसॉफिकल फ्रेगमेंट्स, दार्शनिक टुकड़ों का निष्कर्ष, असंज्ञानिक पोस्टस्क्रिप्ट, जो 1846 में आई। ये योहानिस क्लाइमेकस ने लिखी।
ये तो हेगल की आलोचना से जुड़ी है शायद।
हाँ, ये हेगल के सिस्टम वाले दर्शन पर उनका सबसे जोरदार और विस्तृत हमला है, और इसी किताब में वो अपना सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला सूत्र देते हैं, आत्मनिष्ठता ही सत्य है, सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ।
हाँ, ये मैंने सुना है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये कि जो मैं मान लूं वही सच हो जाएगा, मतलब सब कुछ रिलेटिव है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मतलब नहीं है कि 2+2=5 हो सकता है अगर मैं मान लूं। कीर्केगार्ड का मतलब ये था कि जब बात जिंदगी के सबसे गहरे सवालों की आती है, जैसे ईश्वर में विश्वास, नैतिकता, जीवन का अर्थ, तो इनका जवाब आपको किसी बाहरी वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तथ्य या फॉर्मूले में नहीं मिलेगा। ये चीजें जानने की नहीं, जीने की होती हैं।
अच्छा,
सच्चा सत्य वो नहीं है जिसे आप सिर्फ दिमाग से जान लें, बल्कि वो है जिसे आप पूरी शिद्दत से, पूरे जुनून से, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता,
पर्सनल कमिटमेंट के साथ अपनाते हैं, जीते हैं। वस्तुनिष्ठ ज्ञान अपनी जगह जरूरी है, पर जीने के लिए, फैसले लेने के लिए आपको व्यक्तिपरक सच्चाई यानी अपने अंदर के विश्वास और जुनून की जरूरत होती है।
समझ गई। मतलब जानना काफी नहीं है, उसे जीना, उसे अपनाना असली सत्य है। और द सिकनेस अनटू डेथ, मृत्यु तक की बीमारी, वो किस बारे में है?
ये 1849 में आए एंटी क्लाइमैक्स के नाम से, ये निराशा का बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण है। कीर्केगार्ड निराशा को इंसान की सबसे बुनियादी बीमारी, मृत्यु तक की बीमारी मानते हैं।
हाँ, निराशा बीमारी।
हाँ, वो कहते हैं कि हमारा स्व एक रिश्ता है, वो रिश्ता जो स्वयं का स्वयं से है और जो ईश्वर से भी जुड़ा है। निराशा तब पैदा होती है जब हम या तो वो बनने से इनकार करते हैं जो हम असल में हैं, या फिर हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, या फिर हम ईश्वर से अपने रिश्ते को नकारते हैं। ये अपने आप से और ईश्वर से विच्छिन्न हो जाने की स्थिति है। यहीं वो आस्था के शूरवीर, ये नाइट ऑफ फेथ की बात फिर से करते हैं, वो व्यक्ति जो इस निराशा से उभरकर दुनिया की तमाम मुश्किलों के बावजूद आस्था को थामे रखता है।
उनका लिखने का तरीका भी बहुत अनूठा था। ये इतने सारे छद बनाम, अलग अलग स्टाइल, इसका क्या मकसद था? क्यों नहीं उन्होंने सीधे सीधे अपनी बात कही?
हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। ये सिर्फ नाम बदलने का शौक नहीं था, ये उनके दर्शन का, उनकी सोच का एक अहम हिस्सा था। इसे अप्रत्यक्ष संचार, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। उन्होंने ये जो अलग अलग काल्पनिक लेखक बनाए, कोई आशिक मिजाज है, कोई संजीदा जज है, कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई धार्मिक चिंतक है, हर एक की अपनी आवाज है, अपना नजरिया है।
पर क्यों? पाठक को उलझाने के लिए?
नहीं, उलझाने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। वो पाठक को तैयार जवाब, पका पकाया ज्ञान नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि पाठक खुद सोचे, अलग अलग नजरियों से जूझे, बहस करे और फिर अपना रास्ता खुद चुने, अपनी सच्चाई खुद खोजे। जैसे सुकरात सवाल पूछ पूछ कर लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे, वैसे ही किर्केगार्ड दिन अलग अलग आवाजों के जरिए हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो वो पाठक को एक एक्टिव रोल देना चाहते थे।
बिल्कुल, वो पाठक को निष्क्रिय रिसीवर नहीं, बल्कि विचारों के साथ संवाद करने वाला एक सक्रिय भागीदार बनाना चाहते थे। उनकी किताबें पढ़ना एक तरह की बौद्धिक और आत्मिक कसरत है।
और उन्होंने लिखने की अलग अलग विधाओं को भी मिला दिया है ना, दर्शन, कहानी, मनोविज्ञान।
हाँ, ये भी उनकी खासियत है। उनके काम में आपको फिलॉसफी मिलेगी पर कहानियों के रूप में, मनोविज्ञान मिलेगा पर धर्मशास्त्र के साथ गुंथावा, व्यंग्य मिलेगा पर बहुत गहरी संजीदगी के साथ। वो मानते थे कि जिंदगी के जो सबसे गहरे सवाल हैं, उन्हें सिर्फ सूखे तर्कों से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए कहानी चाहिए, भावना चाहिए, कल्पना चाहिए। उन्होंने डर, निराशा, अकेलापन, विश्वास जैसी चीजों को बयान करने के लिए जैसे एक नई भाषा ही गढ़ी।
इतना सब कुछ लिखा, इतना अनूठा लिखा, फिर भी उन्हें जीते जी वो पहचान क्यों नहीं मिली जिसके वो हकदार थे?
हाँ, ये विडंबना तो है। जीते जी उन्हें डेनमार्क में ज्यादातर लोग एक अजीब सन की शख्सी मानते थे। वो कॉर्सियर कांड ने उनकी छवि को और खराब किया, उन्हें कोई बड़ा अकेडमिक या साहित्यिक सम्मान नहीं मिला। शायद ये उनकी किस्मत थी और कुछ हद तक शायद उनकी अपनी मर्जी भी। वो हमेशा खुद को वो अकेला व्यक्ति, दैट इंडिविजुअल मानते थे जो भीड़ और व्यवस्था के खिलाफ खड़ा है।
तो फिर दुनिया ने उन्हें कब और कैसे पहचाना?
उनकी मौत के काफी समय बाद। पहले डेनमार्क में ही एक आलोचक थे, गियोर्ग रांडेस। उन्होंने 1870 के दशक में उनके काम के महत्व को रेखांकित किया, लेकिन असली पहचान मिली 20वीं सदी में, खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद।
विश्व युद्ध के बाद क्यों?
क्योंकि उस युद्ध ने यूरोप के पुराने मूल्य, पुरानी व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया था। लोगों में एक तरह का खालीपन, निराशा और दिशाहीनता का भाव था। ऐसे में किर्केगार्ड के विचार चिंता, अकेलापन, प्रामाणिकता की खोज, ईश्वर में व्यक्तिगत आस्था का सवाल, भीड़ से अलग खड़े होने का संघर्ष, ये सब लोगों को बहुत अपने, बहुत प्रासंगिक लगे। फिर उनके काम के जर्मन और दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुए और वो यूरोप और फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए।
और उनका असर किन किन क्षेत्रों पर पड़ा? क्या सिर्फ दर्शन पर?
नहीं नहीं, सिर्फ दर्शन पर नहीं, असर तो जबरदस्त और बहुत फैला हुआ था। दर्शन में, जैसा हमने कहा, वो अस्तित्ववाद के पितामह माने गए। हाइडेगर, जैस्पर्स, सात्र, कामू, सिमोन द बुवार, इन सब बड़े विचारकों ने उनसे बहुत कुछ लिया। सार्त्र का वो नारा अस्तित्व सार से पहले आता है, वो तो सीधा किर्केगार्ड की ही देन है। धर्मशास्त्र में उनकी संस्थागत धर्म की आलोचना ने कार्ल बार्थ और पॉल टिलिच जैसे 20वीं सदी के बड़े धर्मशास्त्रियों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने आस्था के व्यक्तिगत और रहस्यमय पहलू पर फिर से जोर दिया। साहित्य में भी उनका गहरा असर पड़ा। फ्रांस काफ्का के अकेले उलझे हुए किरदार, दोस्तोएव्स्की के विश्वास और संदेव से जूझते पात्र, हालांकि शायद दोस्तोएव्स्की ने उन्हें पढ़ा नहीं था, पर विचारों में कमाल की समानता है। हेनरिक इप्सन और ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के नाटकों का मनोवैज्ञानिक तनाव, सैमुअल बेकेट का बेतुका रंगमंच, इन सब पर किर्केगार्ड की छाया देखी जा सकती है। बाद में डब्ल्यू ए ऑडिन, ग्राहम ग्रीन, वॉकर पर्सी, जॉन अपडाइक जैसे लेखकों ने भी उनके विषयों को अपनी तरह से एक्सप्लोर किया।
और हाँ, मनोविज्ञान में भी अस्तित्ववादी मनोचिकित्सा, एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी, जो जीवन के अर्थ, मृत्यु, स्वतंत्रता, अकेलेपन जैसे मुद्दों से जूझती है, उस पर भी रोलों में और इरविन यालोम जैसे लोगों ने किर्केगार्ड से प्रेरणा ली। बाप रे, इतना व्यापक असर, तो क्या आज के जमाने में, आज की दुनिया में भी उनके विचार काम के हैं, प्रासंगिक हैं?
मुझे तो लगता है पहले से भी ज्यादा। आज देखिए, ये डिजिटल युग है, सोशल मीडिया है, 2400 घंटे का न्यूज साइकिल है, भीड़ की आवाज जो अक्सर बिना सोचे समझे, बिना जिम्मेदारी के होती है, वो कितनी हावी है। सब एक जैसा सोचने, एक जैसा दिखने का दबाव महसूस करते हैं। ऐसे में किर्केगार्ड की वो चेतावनी भीड़ असत्य है कितनी सटीक लगती है।
हाँ, ये तो है।
और उनकी प्रामाणिकता की खोज, जिंदगी में सच्चा अर्थ ढूंढने की बात, सतहीपन से बचने की सलाह, ये सवाल तो आज भी हर सोचने वाले इंसान के मन में उठते हैं। शायद आज हमें उनकी जरूरत और भी ज्यादा है।
उनके कुछ कथन तो हैं जो वाकई बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे वो कहते हैं, चिंता स्वतंत्रता का चक्कर है, कितना गहरा है ये। या वो बात, जीवन को केवल पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे बढ़कर जीना चाहिए। ये अनुभव और समझ के बीच का जो तनाव है।
हाँ बिल्कुल। और वो कथन, आत्मनिष्ठता ही सत्य है, ये हमें याद दिलाता है कि जीने लायक सच सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जुनून और प्रतिबद्धता मांगता है। और वो चेतावनी, भीड़ असत्य है, जो हमें भेड़ चाल से बचने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहती है।
एक और है जो मुझे बहुत छूता है, हिम्मत करने का मतलब क्षण भर के लिए अपना संतुलन खोना है, हिम्मत ना करने का मतलब खुद को खो देना है। मतलब जिंदगी में अगर आप रिस्क नहीं लेते, सच के लिए खड़े नहीं होते, तो आप असल में जी ही नहीं रहे।
क्या खूब कहा। और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें भी कम दिलचस्प नहीं, जैसे उनके पिता का वो खोर गरीबी से उठकर अमीर बनना और फिर जिंदगी भर उस अपराध बोध में जीना, रजीना ओल्सन के साथ वो अधूरी पर जीवन बदल देने वाली प्रेम कहानी।
हाँ।
वो कॉर्सेर कांड का सार्वजनिक अपमान झेलना और ये जानना कि उन्होंने अपनी पूरी विरासत सिर्फ लिखने में खर्च कर दी ताकि किसी संस्था या व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े, और अंत में मरते समय भी उस चर्च से अंतिम संस्कार तक लेने से इनकार कर देना जिसकी वो आलोचना करते थे। ये सब उनके कैरेक्टर को दिखाता है।
क्या उनके काम पर कोई फिल्म या नाटक भी बनाया? उसे पर्दे पर लाना तो मुश्किल लगता है।
हाँ, सीधे सीधे रूपांतरण करना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका काम बहुत अंदरूनी, बहुत दार्शनिक है। एक्शन कम, चिंतन ज्यादा है, लेकिन उनके विचारों का, उनके मूड का असर आपको कई महान फिल्मकारों के काम में दिखेगा, जैसे स्वीडन के इंगमार बर्गमैन या डेनमार्क के ही कार्ल थियोडोर ड्रेयर। दिलचस्प बात यह है कि उनके जीवन पर ओपेरा बना है, जैसे पॉल रूडर्स का ओपेरा किर्केगार्ड, और वो काफी सफल रहा है। शायद संगीत उस अंदरूनी कश्मकश को बेहतर पकड़ पाता है।
तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें किर्केगार्ड से कोई एक मुख्य सीख लेनी हो तो वो क्या होगी? क्या है वो एक बात जो हमें उनसे याद रखनी चाहिए?
एक बात चुनना तो मुश्किल है, पर शायद ये कि सच्चा प्रमाणित जीवन जीने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, सवाल पूछने का साहस, भीड़ की राय से अलग चलने का साहस, अनिश्चितता और शक के बावजूद विश्वास करने का साहस, और सबसे बढ़कर अपने चुनाव की, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का साहस। किर्केगार्ड हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि लेखक और नायक हैं।
बिल्कुल सही कहा। और शायद उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चाई कोई बाहर रखी हुई चीज नहीं है जिसे बस जान लेना है, बल्कि वो जीने की, अनुभव करने की और पूरी लगन से अपनाने की चीज है। आज की इस भागदौड़ भरी, शोरगुल वाली दुनिया में जहां भीड़ की आवाज अक्सर हमारे अपने अंदर की आवाज पर हावी हो जाती है, कीर्केगार्ड हमें रुककर सोचने, अपने अंदर झांकने और अपने व्यक्तिगत सत्य को खोजने की चुनौती देते हैं। और शायद यही सवाल खुद से पूछना, मैं अपने लिए एक सच्चा, एक प्रामाणिक जीवन कैसे जी सकती हूँ या जी सकता हूँ, यही सोरेन कीर्केगार्ड को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।